डॉक्टर डोनाल्ड फाउलर, पुराने नियम की पृष्ठभूमि। व्याख्यान 12, लोक समूह हुरियन हित्ती और हबीरू। 2024, डॉन फाउलर और टेड हिल्डेब्रांट। यह पुराने नियम की पृष्ठभूमि पर अपने शिक्षण में डॉक्टर डॉन फाउलर हैं। यह सत्र 12 है, लोक समूह हुरियन हित्ती और हबीरू। मैं यह समझाने के लिए बाध्य महसूस कर रहा हूं कि प्राचीन निकट पूर्व की मेरी आखिरी यात्रा संक्षिप्त थी और हम एक बादल वाले दिन में लगभग 40,000 फीट की ऊंचाई पर विद्वत्तापूर्ण दुनिया में उड़ रहे थे। लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे हम कक्षा में आगे बढ़ते हैं, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि प्राचीन निकट पूर्वी सामग्रियों के दुरुपयोग से बाइबल पाठ को नुकसान हो सकता है, और इसलिए हम में से जो लोग बाइबल में विश्वास करते हैं और बाइबल को प्रमाणित देखना चाहते हैं, हमें यह भी सावधान रहना होगा कि हम सामग्री का उपयोग करते समय अपनी निष्पक्षता न खो दें। सामग्री को अपने आप जीने का अधिकार है और इसका अस्तित्व इसलिए नहीं है कि हम इसे बाइबल के लिए विवादात्मक रूप से उपयोग कर सकें, लेकिन आदर्श रूप से हम यह निष्कर्ष निकालने में सक्षम होना चाहते हैं कि पुरातत्व बाइबल का मित्र है। लेकिन आप मुझे जिस बारे में बात करते हुए सुन रहे हैं वह यह है कि सहस्राब्दियों से लेकर सदियों तक बड़े पैमाने पर बाइबल का दुरुपयोग होता रहा है। मुझे ऐसे कहना चाहिए मानो बाइबल का उद्देश्य यह है कि उस पर विश्वास करने से पहले उसे सिद्ध किया जाना चाहिए। मैं वास्तव में इस बात पर विश्वास करने लगा हूं कि यदि हम इसे खोजने में सफल हो सकते हैं, क्योंकि हमने अभी गिलगमेश महाकाव्य लिखा है, अगर हम आर्क को खोजने और आर्क के अवकाशों में प्रवेश करने की हास्यास्पद स्थिति की कल्पना कर सकते हैं और वहां यह पता चलता है कि हमारे पास एक है नूह का संदेश अक्कादियान में लिखा गया है, और संदेश में नूह हमसे कहता है, मैंने तुमसे कहा था। यह वास्तव में अविश्वास की समस्या का समाधान नहीं करने वाला है, और इसके अलावा यह हमें याद दिलाता है कि पुरातत्व की हमेशा सीमाएं होती हैं। वर्षों पहले मुझे एक युवा संकाय सदस्य के रूप में ग्रेस कॉलेज में एड यामूची के व्याख्यानों की एक श्रृंखला सुनने का सौभाग्य मिला था, और मैंने उन्हें एक महान विनम्रता वाले व्यक्ति के रूप में देखा, और भगवान का शुक्र है कि वह आज भी जीवित हैं। लेकिन इस कथन में यामूची द्वारा पुरातत्व की सीमाओं को स्पष्ट रूप से इंगित किया गया था। एक पुरातात्विक साक्ष्य का केवल एक अंश ही जमीन में बचा है, दो संभावित साइटों का केवल एक अंश ही पता लगाया जा सका है, तीन ज्ञात स्थलों का केवल एक अंश ही उत्खनन किया गया है, चौथा किसी भी प्राचीन स्थल का केवल एक अंश ही खोदा गया है, पांचवा जो कुछ खोदा गया है उसका केवल एक अंश ही पूरी तरह से जांचा और प्रकाशित किया गया है, अंत में जो जांचा और प्रकाशित किया गया है उसका केवल एक अंश ही बाइबल अध्ययन में योगदान देता है, केवल एक अंश। इसलिए मुझे लगता है कि कभी कभी पुरातत्व क्या कर सकता है, इसके बारे में हमारा एक प्रकार का रोमांटिक दृष्टिकोण होता है। मुझे याद है कि एक युवा व्यक्ति के रूप में मैंने दूसरे स्कूल के एक युवा उपदेशक को मंच पर चढ़ते हुए सुना था और हमें बताया था कि पुरातत्व ने बाइबल को सिद्ध कर दिया है। खैर, जिसने भी पुरातत्व पढ़ा है हम हंसते हैं क्योंकि पुरातत्व ने बाइबल को सामान्य विश्वसनीयता प्रदान की है, कम से कम मेरे मूल्यांकन में इसने शायद ही इसे साबित किया है। और जहां तक मेरा सवाल है, पुरातत्व को बाइबल की दासी बनने तक सीमित करना, इसे वैसे ही साबित करना पुरातात्विक साक्ष्यों का दुरुपयोग है। इसलिए जब हम चीजों को उनके मूल संदर्भ से बाहर ले जाते हैं तो यह हमें परेशानी में डाल देता है। हम जो करने जा रहे हैं वह यहाँ की स्थिति को थोड़ा सा स्थानांतरित करना है और निर्गमन से लेकर न्यायाधीशों तक की घटनाओं की पृष्ठभूमि को देखना है। मैं यह सिर्फ हमें याद दिलाने के लिए कर रहा हूँ कि पुराना बेबीलोनियन काल लगभग 1620 या उसके आसपास समाप्त हो गया था, और यह अगली आधी सहस्राब्दी तक नहीं होगा कि हमारे पास अगला महान साम्राज्य होगा, और यह इन साम्राज्यों में सबसे महान होगा। इसलिए लंबे समय तक हमारे सामने ऐसी स्थिति है जिसमें मेसोपोटामिया के पास वास्तव में कोई महाशक्ति नहीं है। इसलिए मैं आपको यह याद दिलाने के लिए मानचित्र के लिए जल्दी से मंच तैयार कर रहा हूं कि जब पुराना बेबीलोनियन काल समाप्त हो जाता है तो बेबीलोन में कैसाइट्स नामक लोगों का निवास होता है, और वे बाबुल पर किसी भी अन्य राजवंश की तुलना में अधिक समय तक शासन करेंगे। और इसलिए जब बेबीलोन गिरता है तो लोगों का एक समूह कासाइट पर्वतीय क्षेत्रों से जाग्रोस पर्वतीय क्षेत्रों की ओर पलायन करता है। उन्हें कैसाइट्स कहा जाता है और उन्होंने सदियों तक बेबीलोन में शासन किया है, लेकिन उन्होंने हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। हमारे पास वस्तुतः कासाइट में लिखी कोई पट्टिका नहीं है, और हम आसानी से कासाइट काल में बेबीलोन का इतिहास लिखने में सक्षम नहीं हैं। लेकिन वे बेबीलोन में शासन कर रहे थे, भले ही उन्होंने पूरे मेसोपोटामिया बेसिन पर शासन नहीं किया था। लोगों का एक दूसरा समूह है जिसे हुरियंस कहा जाता है, शायद जिसे बाइबल हुर्राइट्स कहती है, और इस क्षेत्र में हुरियारिनों का भी बोलबाला है। आप यहाँ मेसोपोटामिया के सुदूर उत्तरी भाग में उनकी मातृभूमि देख सकते हैं, और वे भी इस क्षेत्र में प्रवास करने वाले लोग हैं। वे इसके मूल निवासी नहीं हैं। कैसाइट्स की तरह वे सेमाइट नहीं हैं, वे इंडो यूरोपियन हैं, और इसलिए हम उनके बारे में कुछ बातें कहना चाहते हैं। वे पहली बार 2200 में लिखित अभिलेखों में दिखाई दिए, लेकिन संभवतः वे 24 से 2200 के वर्षों में ऊपरी मेसोपोटामिया में चले गए। पुराने बेबीलोनियन काल तक वे व्यापक रूप से बिखरे हुए थे। इनका उल्लेख सबसे पहले मारी में एक जन समूह के रूप में किया गया था। 1635 तक वे दक्षिणी अनातोलिया पर हमला कर रहे थे। 1480 तक वे किस जुवतना में शासन कर रहे थे जो न्यू टेस्टामेंट कप्पाडोसिया के क्षेत्र में है। अश्शूरियों ने इसे क्वे या शास्त्रीय कैलिसिया कहा। तो लगभग 1600 से 1400 के वर्षों तक ये हुरियन मितन्नी के महान साम्राज्य में प्रमुख जातीय शक्ति थे। उनकी राजधानी वाशुकन्नी दूसरा प्रमुख शाही शहर है जो अभी तक नहीं मिला है। 1370 में हित्ती राजा सुपिलुल्युमा द्वारा हमला किए जाने तक मितन्नी विश्व परिदृश्य में वास्तविक शक्ति थी। इसलिए जब मैंने आपको मितन्नी का साम्राज्य दिखाने के लिए इसे मानचित्र पर रखा तो यहाँ इसे हुराइट्स कहा जाता है। लेकिन मितन्नी के इस साम्राज्य ने कई शताब्दियों तक मेसोपोटामिया क्षेत्र के ऊपरी आधे हिस्से पर शासन किया, और वे तब तक एक प्रमुख खिलाड़ी थे जब तक वे हित्तियों और मेसोपोटामिया के बीच तनाव में नहीं फंस गए। मितानियन साम्राज्य की भाषा हुर्रियन थी, हालांकि दिलचस्प बात यह है कि हम उनके नेतृत्व के नामों का अध्ययन करने से जानते हैं कि वे गैर हुर्रियन थे। हो सकता है कि उनका नेतृत्व ईरान या भारत में से कहीं से आया है। ऐसा लगता है कि बड़े पैमाने पर घोड़ों की शुरुआत ने उन्हें एक शक्तिशाली सैन्य शक्ति बना दिया। उनकी पहचान बाइबिल के हुराइट्स से होने की संभावना है, जिनका उल्लेख केवल उत्पत्ति और व्यवस्था विवरण में किया गया है। यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि मेसोपोटामिया में प्रवास करने वाले सभी लोगों में से वे सबसे व्यापक रूप से फैले हुए थे। 1450 में मितानियन राजा सॉस्टार्टर को थुटमोस III ने हरा दिया, जिससे उसका अधिकांश सीरियाई क्षेत्र खो गया। थुटमोस प्रथम तुतनखामुन ने उसके साथ एक संधि की और उत्तरी सीरिया मितन्नी को वापस कर दिया गया। सॉस्टार्टर और उसके उत्तराधिकारी तुषरत्ता दोनों ने अपनी बेटियों की शादी फिरौन से कर दी। तो हमारे लिए इसे स्थापित करने का मुद्दा यह है कि बाइबल के निर्गमन से ठीक पहले की अवधि में निर्गमन की प्रारंभिक तिथि मानते हुए तीन महान शक्तियां थीं। दक्षिण में मिस्र, उत्तरी मेसोपोटामिया में मितन्नी और आधुनिक तुर्की में हित्ती। 1370 के बाद इसे घटाकर 2 कर दिया गया क्योंकि हित्तिया हुर्रियन साम्राज्य को समाप्त करने में सफल हो गए थे। तो जैसे ही हम अपने मानचित्र को देखने के लिए एक त्वरित क्षण लेते हैं, यदि हम इस तरह के एक सुविधाजनक मानचित्र को देखते हैं तो यह क्षेत्र कई रंगों, सैल्मन, बैंगनी और हरे रंग में है। यह क्षेत्र हित्ती साम्राज्य था। इस प्रकार उत्तर में इस क्षेत्र में मितानियन साम्राज्य था और फिर नीचे मिस्र का साम्राज्य था। 1370 के बाद हम जो कह रहे हैं वह यह है कि यहाँ जो हुर्रियन साम्राज्य था वह चला गया और हमारे पास केवल हित्ती साम्राज्य है। मुझे हित्तियों का एक दिलचस्प समूह लगता है। जैसा कि मेरी सभी परिचयात्मक सामग्री में है, मैंने आपको अपने विवेक से चुनने के लिए कुछ पठन सामग्री दी है, यदि आप इसका अनुसरण करना चाहते हैं। यह उतना आधुनिक नहीं है जितना होना चाहिए, लेकिन फिर भी आप इन ग्रंथसूची संदर्भों का पालन करके अभी भी सीख सकते हैं कि क्या सीखने की जरूरत है। हित्तियों का अध्ययन करते समय हमें एक समस्या होती है क्योंकि हमारे पास एक शब्द है, हित्ती शब्द, लेकिन जैसा कि हमने एमोराइट शब्द में देखा, उस शब्द की कई पहचान हो सकती हैं। तो पहला शब्द यह है कि हित्ती शब्द का प्रयोग मध्य एशिया माइनर के मूल निवासियों के लिए किया जाता है, जिन्हें आमतौर पर हित्ती शब्द की एक अलग वर्तनी या उच्चारण बनाकर पहचाना जाता है। हम इन मूल निवासियों को हट्टियन कहते हैं। मध्य अनातोलिया के उस क्षेत्र का नाम हट्टीलैंड था, इसलिए प्राचीन काल से इसे हट्टीलैंड कहा जाता था और इसलिए 2000 ईसा पूर्व से पहले इन लोगों को हट्टियन कहा जाता था। हट्टियन वास्तव में हित्ती के समान ही है, लेकिन हित्ती एक अनाकार शब्द है। इसके कई अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। तो हम जो कहने जा रहे हैं वह यह है कि 2000 ईसा पूर्व से पहले मध्य एशिया के निवासी हट्टियन थे और जहां तक हम जानते हैं वे प्राचीन काल से मध्य अनातोलिया के उस क्षेत्र में थे। हालांकि लगभग 2000 ईसा पूर्व एक दूसरा जातीय समूह इस क्षेत्र में प्रवास कर गया। वे मध्य एशिया माइनर में इंडो यूरोपीय लोगों का प्रवासन थे और हम उन्हें शाही हित्तियों के रूप में संदर्भित करने लगे हैं। एक या दो पीढ़ी पहले उन्हें कभी कभी नेशिट्स कहा जाता था, लेकिन अब लोग उस शब्द का उपयोग नहीं करते हैं। लगभग 1700 से 1190 तक वे प्राचीन निकट पूर्व में एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति थे। वास्तव में 1370 से शाही हित्ती साम्राज्य के अंत तक एक समयावधि थी जब मिस्रियों और हित्तियों ने दुनिया को आपस में बांट लिया था। यह समूह जो न्यायाधीशों की पुस्तक के मध्य तक पितृसत्ताओं के समय काल के दौरान शासन कर रहा होगा, इसलिए वह समय काल था जिसे हम इंपीरियल हित्तियों कहते हैं। संक्षेप में आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, लगभग 1200 में इंपीरियल हित्ती साम्राज्य का विस्फोट हुआ और उसका अंत हो गया। और जब वह फट गया और सचमुच ढह गया, तब उस क्षेत्र के निवासी थोड़ा बेहतर मानचित्र खोज रहे थे। उस मध्य एशिया माइनर साम्राज्य के निवासी उसके अवशेष यहाँ दक्षिण की ओर चले गए और सुदूर उत्तरी सीरिया में उन्होंने स्थापित किया शहर राज्यों का एक संघ, जिन्हें इतिहासकार नवहित्ती कहकर प्रतिष्ठित करते हैं। यह तीसरा समूह नवहित्तिया दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक सी पीपल्स मूवमेंट का परिणाम था। इसलिए ये अवशेष उत्तरी सीरिया में टॉरस पर्वत पर भाग गए, जहां उन्होंने शहर राज्यों का एक संघ बनाया जिन्हें नवहित्ती शहर राज्य कहा जाता था। तो इस तीसरे कार्यकाल के लिए, हित्ती शब्द के इस तीसरे प्रयोग के लिए हमें एक अनुमानित आयु बताने के लिए हम उन्हें 1200 से लेकर लगभग 800 तक की तारीखें देंगे। अब बाइबल में 1200 हमें न्यायाधीशों की पुस्तक के बीच में रखता है और फिर हमें विभाजित राजशाही की अवधि में ले जाता है, जब डेविड और सुलेमान मर चुके हैं और राज्य दो संस्थाओं में विभाजित हो गया है, उत्तरी साम्राज्य और दक्षिणी साम्राज्य। इसलिए जब हम इन तीन संभावनाओं को देखते हैं और उनकी तुलना बाइबल के रिकॉर्ड से करते हैं, तो हम जो कहेंगे वह यह है। मूल हट्टियन इब्राहिम से भी पहले थे, लेकिन फिर दूसरे समूह इंपीरियल हित्तियों ने न्यायाधीशों की पुस्तक के मध्य तक पितृसत्तात्मक काल को कवर किया, और फिर नवहित्तियों ने न्यायाधीशों के मध्य से लेकर विभाजित तक की समय अवधि को कवर किया। राजतंत्र सम्राट। अब जब हम हित्ती शब्द को देखते हैं, तो इन सब के कारण बाइबल में भ्रम पैदा हो जाता है, क्योंकि हमारे पास केवल एक शब्द है। बाइबल का रिकॉर्ड हट्टियन, इंपीरियल हित्ती और नवहित्ती के बीच अंतर नहीं करता है, नहीं यह हित्ती शब्द के बीच अंतर करता है, क्योंकि यह बाद की तारीख में अश्शूरियों द्वारा उपयोग किया जाने लगा। अश्शूरियों ने असीरिया के पश्चिम में स्थित किसी भी चीज को हट्टी लैंड कहा। इसलिए जब हम अपनी बाइबल पढ़ रहे होते हैं, तो इसने हमारे लिए एक समस्या पैदा कर दी है। जब मैं हित्ती शब्द देखता हूँ, तो मैं संभावनाओं के एक भ्रमित करने वाले कालानुक्रमिक समूह से निपट रहा होता हूँ। आइए देखें कि क्या मैं स्पष्ट कर सकता हूँ कि मेरा क्या मतलब है। जब इब्राहिम की प्रिय पत्नी सारा की हेब्रोन क्षेत्र में मृत्यु हो जाती है, तो हम में से कई लोग अपनी अंग्रेजी परंपरा में इसे हेब्रोन कहते हैं। हेब्रोन को वास्तव में हेब्रोन उच्चारित किया जाता है, और इसलिए हमारी बाइबल परंपरा में बाइबल में हेब्रोन यहाँ दक्षिणी यहूदा में है। जब सारा की मृत्यु हो गई, तो इब्राहिम को एक दफन स्थान की आवश्यकता थी, और इसलिए हेब्रोन क्षेत्र में इब्राहिम ने एक व्यक्ति से एक दफन स्थान खरीदा, जिसे एप्रोन हित्ती कहा जाता है। तो वह इस दफन स्थल को हित्ती एप्रोन से खरीदता है, और इसलिए हम अपनी बाइबल पढ़ रहे हैं, और आपको हित्तियों का यह अविश्वसनीय रूप से संक्षिप्त परिचय मिल गया है, और इसलिए अब आपको एहसास हुआ कि आपको खुद से सवाल पूछना होगा, ठीक है, यह किस हित्ती की बात कर रहा है? क्या यह हट्टियंस के बारे में बात कर रहा है? क्या यह शाही हित्तियों के बारे में बात कर रहा है? क्या यह नवहित्तियों के बारे में बात कर रहा है? ठीक है, तो मान लीजिए कि सारा की मृत्यु मोटे तौर पर 2000 में हुई, बस एक अनुमानित तारीख बताने के लिए। ठीक है, जैसा कि आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, यह उन लोगों के प्रवास की मार्कर तिथि है जो शाही हित्ती बन गए थे। तो इसका मतलब यह है कि जब यह एफ्रॉन को हित्ती कहता है, तो यह एक प्रश्न चिन्ह बनाता है, क्योंकि हमें यकीन नहीं है कि क्या यह एफ्रॉन किसी तरह से मूल हट्टियों में से एक था, जिसने यहाँ से हेब्रोन तक अपना रास्ता बनाया, या क्या वह इसका हिस्सा है। शाही हित्ती लोगों का प्रवासन जो मध्य एशिया माइनर में चले गए, या बाइबिल का पाठ इसे एक भौगोलिक शब्द के रूप में संदर्भित करता है, और यदि ऐसा है, तो यह इस शब्द के असीरियन उपयोग के प्रभाव में होगा, क्योंकि यदि वह चौथा है, यदि संभावना है, तो एफ्रॉन बिल्कुल भी जातीय हित्ती नहीं था, लेकिन उत्पत्ति पाठ सिर्फ यह कह रहा है कि वह एक पश्चिमी था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जब तक हम इब्राहिम के पास पहुंचते हैं और पाठ में एफ्रोन को हित्ती कहा गया है, हम नहीं जानते, हमारे पास उसकी पहचान निर्धारित करने का कोई साधन नहीं है। दूसरे शब्दों में, यदि वह मध्य एशियाई माइनर निवासी है, तो हम खुद से यह सवाल पूछेंगे कि आखिर एक हित्ती इस सुदूर दक्षिण में, जिसे हम फिलिस्तीन कहते हैं, क्या कर रहा है। तो मुझे लगता है यह हमारे लिए एक मामूली दिलचस्प परीक्षण मामला है। जब हमारे पास हित्ती एप्रोन है, तो वह कौन है? और जैसा कि आप उन परिस्थितियों से देख सकते हैं जिनसे हम निपट रहे हैं, हम वास्तव में उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते। पुराने नियम में एक और हित्ती है, वह एप्रोन से कहीं अधिक प्रसिद्ध है, और उसका नाम उरियाह है। अब आप उरियाह को बतशेबा के पति के रूप में याद कर सकते हैं। पाठ हमें बताता है कि उरियाह दाऊद की सेना में हित्ती भाड़े का सैनिक था। अब डेविड लगभग 1000 ईसा पूर्व रहे होंगे। मुझे खेद है, हाँ 1000 ईपू। इसलिए जैसा कि हम लगभग 1000 ईसा पूर्व में उरियाह को देखते हैं, हम इसे देख सकते हैं और कह सकते हैं कि डेविड था, शाउल लगभग 1050 से 1010 तक राजा था। डेविड 1010 से 970 तक राजा रहा होगा। तो इसका मतलब है कि उरियाह रहा होगा कोई है जो जीवित था। चूंकि उरियाह 1010 की तुलना में 970 के करीब रहा होगा, शायद हम उरियाह को बीच में रख सकते हैं। लेकिन हमारा सवाल है, अगर वह हित्ती है तो इसका क्या मतलब है? खैर, इसका मतलब यह है कि वह शायद, यदि निश्चित रूप से नहीं, तो मूल हट्टियन से जुड़ा नहीं है। इसका मतलब यह होगा कि वह संभवतः हित्ती साम्राज्य के समय से नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि वह नवहित्ती रहा होगा, और यह बताता है कि वह भाड़े का सैनिक क्यों था। क्योंकि जैसा कि हम हित्ती शब्द को देखते हैं, यही हुआ होगा। इस क्षेत्र में ऊपर तलहटी में जहां नवहित्ती शहर राज्य थे, ग्रेट सी पीपुल्स मूवमेंट के बाद की दुनिया में बहुत संभावना है कि नवहित्ती उरियाह ने सी पोस्ट पीपल्स वर्ल्ड डील में मदद करने के लिए खुद को भाड़े के सैनिक के रूप में काम पर रखा था। सी पीपल्स की उस विनाशकारी घटना के बाद एक बिल्कुल नई दुनिया के मुद्दे के साथ। तो यह हमें एक ऐसी पद्धति प्रदान करता है जिसके बारे में जागरूक होना जरूरी है। हमारे पास एक नाम है, लेकिन हमें खुद से यह सवाल पूछना होगा, उस नाम का उपयोग कैसे किया जाता है। तो इस विशेष मामले में हित्ती, फिर उरियाह के मामले में लगभग निश्चित रूप से इसका मतलब यह होगा कि वह एक नवहित्ती था। इंपीरियल हित्ती, जो हित्ती साम्राज्य की भाषा है, क्यूनिफॉर्म और चित्रलिपि दोनों लिपियों में लिखी गई भाषा थी। हालांकि हित्ती संग्रह का अधिकांश हिस्सा चित्रलिपि के बजाय क्यूनिफॉर्म लिपि में लिखा गया है। चित्रलिपि का अर्थ मिस्र नहीं है। इसका अर्थ है कलात्मक प्रकार की लिपि जो मिस्र की लिपि जैसी दिखती है, लेकिन वास्तव में हित्ती भाषा है। अधिकांश नवसेमिटिक इंडो यूरोपीय भाषा, बेडेक रोजनी नामक चेकोस्लोवाकियाई विद्वान ने हित्ती साम्राज्य की राजधानी की खुदाई की, जिसे हट्टुशा कहा जाता था। वहां उसने पाया कि साम्राज्य की राजधानी क्या थी और उसे वह तख्ती मिली। मेरा मानना है कि हर पुरातत्ववेत्ता का एक लक्ष्य राजधानी शहर को ढूंढना, महल को ढूंढना और फिर शाही संग्रह को ढूंढना है। तो हरोसजी भाग्यशाली था कि उसे वह मिल गया और फिर उसने हित्ती भाषा को समझना शुरू कर दिया, क्योंकि यह सेमिटिक नहीं है, यह इंडो यूरोपीय है। और इसलिए वहां उन्होंने इसे समझना शुरू किया और इस प्रकार बेहद महत्वपूर्ण हित्ती गोलियों को इंडो यूरोपीय भाषा में डाल दिया गया। कानूनों का मूल अंग्रेजी अनुवाद मूल रूप से नेफेल्ड के अनुवाद हित्ती कानूनों में था। आज निश्चित रूप से हमारे पास संस्करण है, ब्रिल द्वारा प्रकाशित और WW हेलो द्वारा संपादित तीन खंड संस्करण, और आप द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नामक हेलो द्वारा संपादित उस खंड में हित्ती टैबलेट्स को उनके सबसे हालिया रूप में अंग्रेजी अनुवाद में पढ़ सकते हैं। धर्मग्रंथ। तो किसी भी मामले में यह जर्मन विद्वान हरोजी पर छोड़ दिया गया था कि इन हित्ती गोलियों में विभिन्न कानूनों का एक रूप था जो प्राचीन निकट पूर्व में इन गोलियों में खुद को दोहराया गया था। रोसजी ने इस रूप को नोट किया जो प्राचीन निकट पूर्व संधि पट्टिकाओं के बाकी हिस्सों में पाया गया था, और उन्होंने सुझाव दिया कि इन संधियों में 6 प्रमुख संरचनागत विशेषताएं थीं। उन्होंने पहचाना कि दस्तावेजों में एक प्रस्तावना थी। उन्होंने एक पूर्ववर्ती इतिहास की पहचान की, यानी दो शक्तियों के बीच एक संधि, इसलिए उन्होंने माना कि दोनों के दृष्टिकोण से सूचीबद्ध एक पूर्ववर्ती इतिहास था। तीसरा, दोनों संधि प्रतिभागियों के भविष्य के संबंधों के संबंध में सारगर्भित बयान था। चौथा, विशिष्ट शर्तें थीं, हम उन्हें रिश्ते को नियंत्रित करने वाले कानून कहेंगे। पांचवा, चूंकि संधि एक कानूनी और आधिकारिक दस्तावेज थी, इसलिए संधि के गवाह के रूप में देवताओं का आह्वान किया गया था। और फिर अंत में शाप और आशीर्वाद थे। यदि दो भागीदार संधि के प्रति वफादार थे तो आशीर्वाद, और यदि उनमें से एक नहीं था तो शाप। खैर, इस अवलोकन से यह मान्यता मिली कि वही सामान्य अवधारणा शासित होती है, जैसे कि व्यवस्था विवरण की पुस्तक। उपयोगी कार्यों में से एक जर्मन विद्वान क्लॉस बाल्जर का है, जिन्होंने मूल रूप से इस दस्तावेज को जर्मन में प्रकाशित किया था, लेकिन अब यह अंग्रेजी में उपलब्ध है, हालांकि यह प्रिंट से बाहर है, जैसा कि मैंने आखिरी बार सुना था। वाचा सूत्रीकरण। इसमें हम देख सकते हैं कि बाइबल में वही मोटा प्रारूप दिखाई देता है, प्रस्तावना, ऐतिहासिक प्रस्तावना, मूल घोषणा, अधिक विस्तृत शर्तें और जागीरदार द्वारा औपचारिक समर्थन। दूसरे शब्दों में, जब हम इसे जोशुआ 24 पर लागू करते हैं तो वही कच्ची सूची, जिसे हम संधि प्रारूप कहेंगे, पुराने नियम में दिखाई देती है। आप इसे यहोशू अध्याय 24 में देख सकते हैं, और आप इसे व्यवस्था विवरण की पुस्तक में देख सकते हैं। वास्तव में यही प्रारूप व्यवस्था विवरण पर लागू किया गया है। वेस्टमिंस्टर थियोलॉजिकल सेमिनरी के महान प्रेस्बिटेरियन विद्वान ने ड्यूटेरोनॉमी की पुस्तक में इसी संधि प्रारूप को मान्यता दी और एक अद्भुत पुस्तक लिखी। यह अब निश्चित रूप से काफी पुरानी हो चुकी है, जिसे महान राजा की संधि कहा जाता है। इस पुस्तक में क्लाइन ने दिखाया कि वही संधि प्रारूप, जिसे हित्ती संधियों में मान्यता दी गई थी, ड्यूटेरोनॉमी की पुस्तक के लिखे जाने के तरीके में भी फिट बैठता है। अब हम दर्शकों को यह आभास नहीं देना चाहते कि यहाँ नकल हो रही है। हुआ यह है कि प्राचीन विश्व में संधि करने के एक सामान्य तरीके का प्रसार हुआ था, और वह प्रसार वस्तुतः हर संस्कृति में पाया गया। इसलिए जहां भी संधियां हुई, उन्होंने इस मोटे सामान्य प्रारूप का पालन किया। और इसलिए एक चीज जो हम देख सकते हैं, वह यह है कि प्राचीन निकट पूर्वी लोगों ने एक सामान्य संधि प्रारूप का पालन किया था, जो हमें बता रहा था कि दुनिया एक नए स्वर्ण युग में प्रवेश कर रही थी, जिसमें फर्टाइल क्रिसेंट सहित सभी राजनयिक संबंधों का युग शामिल था, मिस्र के साथ संधि संबंध। इसलिए एक पुस्तक के रूप में व्यवस्था विवरण को एक दस्तावेज के रूप में समझा जा सकता है, जिसकी सामान्य रूपरेखा समान संधि प्रारूप का अनुसरण करती है। इस मामले में व्यवस्था विवरण में संधि महान राजा येपेथ और इसराइलियों के बीच है। मूसा वह व्यक्ति होता जो आधिकारिक तौर पर येपेथ के साथ संधि कर रहा था। तो व्यवस्था विवरण आम तौर पर कहें तो इसी प्रारूप का अनुसरण करता प्रतीत होता है। अब यदि हित्तियों का शाही साम्राज्य 1200 में समाप्त हो गया और मूसा ने अपना दस्तावेज 1400 में लिखा, तो कुछ लोगों ने उन तारीखों को यह साबित करने के लिए एक तर्क के रूप में उपयोग करने की कोशिश की है कि मूसा आलोचनात्मक सिद्धांत के बजाय जल्दी लिख रहे थे, जो कि वह देर से लिख रहा है, यदि वास्तव में उसने लिखा भी है। संभवतः हमारे लिए बेहतर होगा कि हम उन तारीखों का उपयोग करके मूसा के लिए शुरुआती तारीख को साबित करने की कोशिश न करें, क्योंकि वास्तव में हमने आपको जो संधि प्रारूप दिखाया है वह बिल्कुल कालातीत है। और इसलिए उन घटनाओं के आधार पर मूसा की प्रारंभिक तिथि पर बहस करने का प्रयास करना उपयोगी नहीं है। परंतु हम कह सकते हैं कि मूसा इसराइल का राजा था जिसने यहोवा के साथ संधि की थी, और इसलिए हित्ती दस्तावेज हमें एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर जल्द से जल्द शिखर तक पहुंचाने में बहुत मददगार रहे हैं। यदि मैं किसी अन्य लोगों के समूह में स्थानांतरित हो सकता हूं, तो मैं आपके साथ हबीरू के बारे में बात करना चाहूंगा। कक्षा में इसे पढ़ाने से मुझे पता चला कि मेरे छात्रों के लिए इसमें महारत हासिल करना सबसे कठिन विषय क्षेत्रों में से एक है। उनमें से कुछ को तो हिब्रू भाषा भी आती थी, और निःसंदेह जब उनके पास हिब्रू भाषा होती है, तो वे इसे उन छात्रों की तुलना में बहुत जल्दी सीख लेते हैं जिन्होंने हिब्रू भाषा नहीं सीखी है। तो शायद मैं इस अवसर का उपयोग दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कर सकता हूं और कह सकता हूं कि बाइबल का कोई कारण नहीं है कि आप हिब्रू का अध्ययन क्यों नहीं कर सकते। वास्तव में इसे और अधिक सकारात्मक शब्दों में कहें तो आज की दुनिया में दोस्तों आप जोंडरवन जैसी जगहों पर जा सकते हैं और आप ऑनलाइन सामग्री खरीद सकते हैं जो आपको हिब्रू व्याकरण का उपयोग करने में सक्षम बनाती है और आप सीधे अपने तरीके से हिब्रू का अध्ययन कर सकते हैं बैठक कक्ष और इसलिए या जहां भी आपका कंप्यूटर है। इसलिए मैं आपको ऊंचे लक्ष्य रखने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। मैं आपको अध्ययन करने में सक्षम होने, हिब्रू और ग्रीक का उपयोग करके बाइबल का अध्ययन करने में सक्षम होने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। आप जानते हैं जब मार्टिन लूथर जीवित थे उन्होंने अपनी दुनिया को सिखाया कि मूल भाषाओं में बाइबल का अध्ययन करने का कोई विकल्प नहीं है और मुझे लगता है कि यह आज भी सच है। इसलिए जैसे ही हम हबीरू की समस्या के बारे में बात करने के लिए तैयार हो रहे हैं मैं आपको सुझाव देना चाहूंगा कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि आप में से कई लोग अपने कंप्यूटर का उपयोग करके हिब्रू का अध्ययन करने में सक्षम बनाने के लिए उपलब्ध असंख्य सामग्रियों का उपयोग न कर सकें। अपने दम पर। खैर, इब्रानियों को इब्रानी क्यों कहा जाता है? उत्पत्ति की पुस्तक के अध्याय 14 में इब्राहिम को हिब्रू कहा गया है। यह पहली बार है जब हमने इस शब्द का प्रयोग किया है। अध्याय 14 श्लोक 13 में तब एक भगोड़े ने आकर इब्राहिम से कहा, इब्राहिम अब्रान। खैर, उत्पत्ति 14:13 में हम खुद से सवाल पूछते हैं, अब्रान को हिब्रू क्यों कहा गया? वहां इसका क्या मतलब है? ठीक है, आइए मैं आपके लिए बोर्ड पर लिख दूं कि हम यह कैसे करेंगे। अब आप इस आय पर ध्यान देंगे। आप सभी जानते हैं कि पुराना नियम इससे भरा हुआ है। कनानी, परजीवी, हित्ती, इसराइली। खैर, हिब्रू में इनमें से कोई भी वस्तु मौजूद नहीं है। शायद यह हमें सेप्टुआजेंट से आता है, लेकिन वे सभी लोग जिन्हें हम इट्स कहते हैं वे सभी लोग हैं जो सिगला आय पर समाप्त होते हैं। यह वास्तव में कनानी है, कनानी नहीं। यह वास्तव में इसराइली नहीं है और यह इसराइली है। तो या बनी इसराइल, इसराइल की संतान। इब्रानियों को वास्तव में इवरी कहा जाता है। तो हम अपने आप से यह प्रश्न पूछने जा रहे हैं कि अध्याय 14 श्लोक 13 में इब्राहिम को हिब्रू क्यों कहा गया है? अनेक व्याख्याएं होती हैं, हमेशा अनेक व्याख्याएं होती हैं। मुझे यह सिर्फ हास्यप्रद लगता है। जब मैं 20 साल का था तो हम कहते थे अब इसके लिए दो राय हैं। आज हमें जो भी नई जानकारी मिली है उसके बाद हम आपसे यही कहेंगे कि वास्तव में इसके लिए 10 विचार हैं। जैसे जानकारी ढूंढना, जितनी अधिक जानकारी हमें मिलती है हमारे पास अधिक संभावित स्पष्टीकरण होते हैं। तो जैसा कि हम इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करते हैं, इब्राहिम को हिब्रू क्यों कहा जाता है? विभिन्न व्याख्याएं हैं। एक अपेक्षाकृत लोकप्रिय बात यह है कि इब्राहिम को हिब्रू कहा जाता है क्योंकि उसके पूर्वज का नाम एबर था। अध्याय 10 श्लोक 24 में हिब्रू में यह शब्द अलग अलग स्वरों के साथ इस तरह दिखाई देता है, एबर, लेकिन यह एक ही शब्द है। यहां इसे अलग अलग स्वरों के साथ थोड़ा अलग ढंग से लिखा गया है, लेकिन हिब्रू में यह एक ही मूल व्यंजन है। दूसरे शब्दों में वही मूल व्यंजन जो ये साझा करते हैं वह यह रफ ब्रीदिंग मार्क बी और आर है। ये तीन व्यंजन हैं जो इन दोनों में समान हैं। एवरी और एबर तीन व्यंजन साझा करते हैं। उन्हें स्वरों के साथ अलग अलग तरीके से लिखा जाता है लेकिन उनमें तीन व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो यदि आप अपनी अंग्रेजी अध्ययन बाइबिल पर जाएं, तो वहां अब 20 या 30 अलग अलग अंग्रेजी अध्ययन बाइबिल हैं। इब्राहिम को हिब्रू क्यों कहा जाता है? इसकी अधिक सामान्य व्याख्याओं में से एक यह है कि वह एबर का वंशज है। एबर, जैसा कि मैंने अपने नोट्स में उल्लेख किया है, शेलक का पुत्र, अर्पक्षद का पुत्र, शेम का पुत्र, पेलेक का पिता, रेऊ का दादा, सेरुक का परदादा था, जिससे नाहोर पैदा हुआ, जो अब्राहम का दादा था। खैर, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उस पैराग्राफ में खुद से सवाल पूछूंगा। इब्राहिम के पूर्वजों के कई पीढ़ियों से चले आ रहे उस पैराग्राफ में मैंने उसे पढ़ा, और मैं खुद से सवाल पूछता हूँ, क्या एबर ने कुछ भी किया जो इतना महत्वपूर्ण था कि इब्राहिम को बुलाया जाना चाहिए? यह सचमुच एबेराइट है। इब्राहिम को एबेराइट क्यों कहा जाएगा? क्योंकि यदि आप उत्पत्ति 14 पर वापस जाते हैं और यह भ्रमित करने लगता है, तो आप बस मुझे अपने प्रश्नों से रोक देते हैं। खैर, एक मिनट रुकें, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि यह ऑनलाइन है। काश आप मुझे रोक पाते ताकि जहां आवश्यक हो मैं इसे दोबारा समझा सकूं, क्योंकि यह वास्तव में भ्रमित करने वाला है। मूल हिब्रू भाषा में हमारे पास यहां जो है वह निश्चित लेख है। इसलिए यदि अब्राहम एबेराइट है, तो हमें खुद से यह सवाल पूछना चाहिए कि नामों की उस सूची में एबर ने ऐसा क्या किया जो इतना महत्वपूर्ण था कि अब्राहम को एबेराइट कहा जाएगा। मुझे उम्मीद थी कि उसे शेमाइट कहा जाएगा, क्योंकि शेम एबर से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, या पेलेग भी, लेकिन हम उस पर गौर करते हैं और खुद से सवाल पूछते हैं, एबर कौन है कि उसे एबेराइट कहा जाना चाहिए? तो इसका उत्तर देने में मेरा पहला प्रश्न यह होगा कि एबर कौन है, और दूसरी बात, निश्चित लेख क्यों? अब हिब्रू और अंग्रेजी में बहुत सी बातें समान नहीं हैं, लेकिन दोनों भाषाओं में एक बहुत ही मामूली सी बात समान है। आप उचित नामों पर निश्चित लेख नहीं रखते, क्योंकि वे स्वतः ही निश्चित हैं। मेरी पत्नी पेग है। मैं पेग नहीं कहता, क्योंकि वह पेग है। यह स्वतः ही निश्चित है। इसलिए हिब्रू में आप वस्तुतः कभी भी किसी उचित संज्ञा पर निश्चित लेख नहीं डालते हैं, चाहे वह किसी देश का नाम हो या कोई व्यक्तिगत नाम हो। आप वस्तुतः कभी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा पर निश्चित लेख नहीं डालते। अब हमारे पास एक ऐसा राष्ट्रपति है जिसे उसके चुनाव से पहले डोनाल्ड कहा जाता था, लेकिन जहां तक मुझे पता है, वह एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बारे में मैंने अपने जीवन काल में सुना है जिनके नाम के आगे निश्चित लेख लगा हुआ था। तो हम खुद से दूसरा सवाल पूछते हैं, यदि हिब्रू एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो क्या उसके सामने निश्चित उपपद है? यह वस्तुतः अभूतपूर्व है। तो इब्राहिम को हिब्रू क्यों कहा जाता है, यह समझाने के पूर्वज के रूप में एबर को समझाने में मेरे सामने ये दो समस्याएं हैं। तो उम्मीद है आप इसे तब प्राप्त कर सकते हैं। यह अभी भी बहुत बुरा नहीं है। इसके साथ एक समस्या यह है कि उसे एबेराइट क्यों कहा जाता है, क्योंकि एबेर कौन था और उसने ऐसा क्या किया जिससे इब्राहिम एबेराइट कहलाया, और दो, इसमें निश्चित लेख क्यों है? इसलिए मुझे लगता है कि ये अब्राहम को हिब्रू क्यों कहा जाता है, इसकी पहली व्याख्या के साथ समस्याएं हैं। हालांकि अध्ययन बाइबल में शायद यह सामान्य व्याख्या है कि अब्राहम को एबर का वंशज कहा जाता है। इसलिए यदि मैं कर सकता हूं, तो मैं इन्हें मिटा दूंगा और इसके लिए दूसरा स्पष्टीकरण देखूंगा। बहुत प्रसिद्ध विद्वान विलियम अल्ब्राइट ने डेढ़ पीढ़ी पहले प्रस्तावित किया था कि अब्राहम को हिब्रू कहा जाता है, क्योंकि हिब्रू शब्द अक्काडियन मूल अर्थ से संबंधित है, जिसका अनुवाद गधा चालक था। दूसरे शब्दों में, मैं उस युग में बड़ा हुआ जब हॉलीवुड ने नाटकों की तुलना में पश्चिमी फिल्मों का अधिक उत्पादन किया। अब्राहम खच्चर की खाल निकालने वाला था। अब आज जब भी मैं अपनी कक्षा में ऐसा कहता हूँ, मेरे छात्र मुझे पूरी तरह से खाली भाव से देखते हैं क्योंकि उन्होंने म्यूल स्किनर शब्द कभी नहीं सुना है। लेकिन जब मैं बच्चा था, खच्चर की खाल उतारने वाले का मतलब था कि आप जानते हैं कि आप चीजों को खींचने के लिए गधों का इस्तेमाल करते थे। आप एक गधा चालक थे। खैर, यह एक दिलचस्प प्रस्ताव था, लेकिन जाहिर तौर पर अल्ब्राइट की मृत्यु किसी के द्वारा उनके सुझाव को अपनाए बिना ही हो गई। मैंने स्वयं कहीं भी प्रिंट में नहीं पढ़ा है कि अल्ब्राइट ने कहां गोद लिया था, क्षमा करें, जहां किसी ने अल्ब्राइट के प्रस्ताव को अपनाया था, लेकिन वह जो सुझाव दे रहा था कि इब्राहिम को गधा चालक कहा जाता था क्योंकि जब इब्राहिम पश्चिम आया था तो उसके पास बहुत बड़ी संख्या में लोग थे और वह ऐसा करेगा इसलिए उनके पास बहुत बड़ी संख्या में गधे थे और इसलिए उनका यह नाम रखा गया क्योंकि ये गधे, जो शायद बड़े नहीं होते तो सैकड़ों की संख्या में होते, उनके आंदोलन की विशेषता थे। लेकिन वास्तव में हमें यह बताने के लिए कोई सबूत नहीं है कि यह इब्राहिम क्यों का सही स्पष्टीकरण है, क्योंकि आखिरकार अगर उसे गधा चालक कहा जाता था तो फिर इसराइलियों की सभी बाद की पीढ़ियों को इब्री क्यों कहा जाता था। यदि यह इब्राहिम द्वारा बड़ी संख्या में गधों को रोजगार देने से संबंधित था तो यह नाम क्यों बना रहा। तीसरा दृष्टिकोण क्रिया के अर्थ से लिया गया है और मुझे लगता है कि यह दृष्टिकोण सबसे अच्छा उत्तर है। हिब्रू में सैद्धांतिक रूप से, हिब्रू में सभी मूल शब्दों में तीन व्यंजन होते हैं। यदि उनमें तीन से अधिक व्यंजन हैं या तीन से कम व्यंजन हैं, तो वे संभवतः ऋण शब्द हैं। हिब्रू गणितीय रूप से एक ऐसी भाषा है जिसमें सभी शब्दों, जब तक कि वे ऋण शब्द न हो, में तीन व्यंजन होते हैं। तो ये तीन व्यंजन, याद रखें कि यह अल्पविराम की तरह दिखता है, लेकिन इसे हम एक कठिन श्वास चिन्ह कहते हैं, यह एक CH है। तो हिब्रू में ये तीन व्यंजन एक मूल से आते हैं जिसका अर्थ है पार करना, पार करना। और इसलिए इब्रानियों को इब्रानी क्यों कहा जाने लगा, इसके स्पष्टीकरण के रूप में मैं जो सुझाऊंगा वह यह है कि इब्राहिम का विश्वास का महान कार्य पार करना था। इसलिए जब हम इब्राहिम को देखते हैं, इब्राहिम उर छोड़ रहा है, तो मुझे लगता है कि उर यहाँ उत्तरी मेसोपोटामिया में कैरन के करीब था। इसलिए इब्राहिम का भगवान से महान आदेश जिसके लिए उसे बचाने वाला विश्वास मिला, वह यह था कि उसके पास विश्वास करने के लिए विश्वास था भगवान अपनी मातृभूमि को छोड़ दें और सचमुच पार कर जाएं। उसने सैकड़ों सैकड़ों मील की दूरी पार की, लेकिन उसने कई नदियों को भी पार किया। यहाँ उसने बालाक नदी को पार किया और यहाँ उसने परात नदी को पार किया। मैं प्रस्तावित करूंगा कि इब्राहिम को हिब्रू कहा जाए क्योंकि वह वस्तुतः अपनी मातृभूमि को पार करके उस भूमि पर आया था जो भगवान ने उसे दी थी। इससे हमें यह भी पता चलता है कि हमारे पास निश्चित लेख क्यों होगा, क्योंकि हिब्रू में निश्चित लेख को एच के साथ लिखा जाएगा और इसलिए इसे यहाँ इवरी लिखा गया है। अब यह हाइवरी है और हाइवरी वह जगह है जहाँ मुझे लगता है कि हिब्रू शब्द है से आया। इसलिए जिन इब्रानियों का मैं आपके सामने प्रस्ताव रख रहा हूँ उन्हें इब्रानी कहा जाता है, क्योंकि इब्राहिम के विश्वास का महान कार्य ईश्वर की आज्ञाकारिता में अपनी मातृभूमि से पार करना था। इस प्रकार उत्पत्ति के अध्याय 14 श्लोक 13 में संक्षेप में इब्राहिम को वह कहा जाता है जो पार हो गया। तो मेरे सोचने के तरीके में यही सही व्याख्या है। अब मुझे आपको यह बताने में जल्दी होगी कि मैं इस पर बहुमत के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व कर भी सकता हूँ और नहीं भी। मेरे कुछ करीबी दोस्त इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते। तो इसका मतलब यह है कि वास्तव में आपके पास चुनने के लिए दो विकल्प हैं। एक को उसने एब्राइट कहा है और दो को उसने पार करने वाला कहा है। तो आपकी अपनी पसंद हो सकती है, लेकिन जहां तक मुझे पता है इब्रानियों को इब्रानी क्यों कहा जाने लगा, इस बारे में ये आपकी दो पसंद हैं। अब शायद आपको वह मिल गया। शायद यह बहुत भ्रामक नहीं है और शायद हम कर सकते हैं। हम में से अधिकांश अभी भी समुदाय की भावना महसूस करते हैं। हम एक दूसरे को समझते हैं। हम एक साथ रहने के इस अवसर के लिए खुश हैं, लेकिन अब मैं चर्चा जारी रखूंगा और ईसाई धर्म की जिस परंपरा से मैं आया हूं, उसमें मैं उपदेश देना छोड़ दूंगा और हस्तक्षेप करने जा रहा हूं, क्योंकि यह तब और अधिक जटिल हो जाता है जब हमें पता चलता है कि प्राचीन दुनिया में हबीरू नामक एक घटना थी। मैंने यहां अपनी चर्चा हबीरू शब्द से शुरू की। इसलिए जब हम अपनी चर्चा को देखते हैं तो हम जो कहने जा रहे हैं वह यह है कि हमारे पास दो शब्द हैं जो काफी हद तक एक जैसे दिखते हैं। ये दो शब्द हैं हबीरू और हिब्रू। और इसलिए हम जो सवाल पूछ रहे हैं वह यह है कि क्या इन दोनों चीजों का मतलब एक ही है या उनका मतलब अलग अलग है। यही वह प्रश्न है जो हम पूछने जा रहे हैं। तो जैसा कि हम इसे देखते हैं, हम आपको एक लोकप्रिय सुझाव बताएंगे जो कुछ इंजील विद्वानों का सुझाव है कि इन दो शब्दों का मतलब एक ही है। हबीरू और हिब्रू एक ही चीज हैं। फिर मेरे ऐसे मित्र हैं जो इस बात पर कायम हैं। तो इस दृष्टिकोण का तर्क है कि इब्राहिम को हिब्रू कहा जाता था क्योंकि वह वास्तव में एक हबीरू था। तो पृथ्वी पर हबीरू कौन है? मुझे यकीन नहीं है कि हम इस टेप के लिए निर्धारित समय में इसका उत्तर पा सकेंगे, इसलिए यह चर्चा अगले टेप में शामिल हो सकती है। मेरा कैमरामैन मुझे बताएगा कि मुझे इसे कब पैक करना है। हबीरू एक शब्द है। यह एक अक्काडियन शब्द है, किसी राष्ट्र के लिए नहीं बल्कि एक राजनीतिक घटना, एक भूराजनीतिक घटना के लिए। सही। अब इंजीलवादी इस शब्द का उपयोग क्यों करना चाहेंगे? ठीक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि मोटे तौर पर उस समय जब यहोशू इसराइलियों को देश में ला रहा था, हमारे पास मिस्र में पाए गए पत्र हैं। जिनमें फिलिस्तीन के विभिन्न राज्य मिस्र के राजा को पत्र लिख रहे थे और कह रहे थे कि हबीरू हैं, आ रहा हूं, सेना भेजो। ठीक है, आइए इसे ऐसे ही कहें। तो लगभग 1370 से अगले 20 वर्षों तक यहोशू भूमि पर विजय प्राप्त करने के लिए इसराइल के सैन्य बलों का नेतृत्व कर रहा है, और जब वह ऐसा कर रहा है तो वास्तव में हमारे पास वास्तव में यरूशलेम का राजा है। यह तब इसे यबूस कहा जाता था, लेकिन हमारे यहाँ यरूशलेम के राजा ने मिस्र के फिरौन को पत्र लिखकर कहा है कि हबीरू आ रहे हैं, सेना भेजो। इसलिए इंजील विद्वानों को यह तर्क देना आकर्षक लगा कि इसलिए हबीरू और हिब्रू एक ही चीज हैं, और जो हो रहा है वह यह है कि हिब्रू देश में आ रहे हैं, और हमारे पास अब यह साबित करने के लिए पुरातात्विक साक्ष्य हैं कि हिब्रू देश में आ रहे हैं। भूमि क्योंकि निवासी राजा हबीरू से मदद मांग रहे हैं। ठीक है, इसलिए मुझे आशा है कि मैंने इसे किसी तरह स्पष्ट कर दिया है। यदि मैंने ऐसा नहीं किया है तो मुझे नहीं पता कि समस्या के बारे में क्या करना चाहिए, क्योंकि हम केवल एक व्याख्यान दे रहे हैं, कोई बातचीत नहीं। लेकिन हम चर्चा को रोकने जा रहे हैं, क्योंकि खुश चेहरों को चित्रित करने से पहले हमें जो करने की जरूरत है वह प्रश्न चिन्ह को गले लगाना है। तो हम जो करने जा रहे हैं वह अक्कादियन शब्द हबीरू पर एक नज़र डालना है और यह देखना है कि अक्कादियन में इस शब्द का क्या अर्थ है, इससे पहले कि हम खुद को यह निष्कर्ष निकालने की अनुमति दें कि हबीरू और हिब्रू एक ही चीज हैं। तो यह मुझे हमारी चर्चा को रोकने के लिए एक अच्छी जगह लगती है, और फिर जब हम वापस आते हैं तो हम जो करने जा रहे हैं वह हबीरू के अक्कादियन अर्थ को देखना है, और फिर जब हम इसे समझते हैं तो हम अपना निष्कर्ष निकाल सकते हैं इस बारे में कि क्या हमारे पास विजय का प्रमाण है या हमारे पास विजय का यह प्रमाण नहीं है। उम्मीद है कि हमारी चर्चा को विराम देने के लिए यह एक अच्छी जगह है। यह पुराने नियम की पृष्ठभूमि पर अपने शिक्षण में डॉक्टर डॉन फाउलर हैं। यह सत्र 12 है, लोक समूह हुरियन, हित्ती और हबीरू।